पर्याप्ति प्राण वगैरह अंतिम जो चैप्टर है पाठ है उसको देखा था, अब शुरू से इसको देखते हैं। हाँ, मिली हुई लेना, वो उपयोग कितने प्रकार के है, एक जीव को कितने प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। अब जो एकेंद्रीय जीव है तो उसको कितने प्रकार के उपयोग होंगे। मति सूत्र अचक्षु दर्शन, यानी मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, हाँ, और अचक्षु दर्शन उपयोग, ऐसे तीन हो गए। हाँ, हर एक के अलग अलग हो गए, दो इंद्रिय वाले के गिनो, तीन इंद्रिय असंगी तक, तो ये जिसको चार इंद्रिय तक के जीव, तीन इंद्रिय तक के, चतुर इंद्रिय वाले को चक्षु दर्शन भी होगा, जिसको अवधि ज्ञान है, मन सहित वाले जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि दर्शन भी होगा, छह होगा, जिसको मन परे ज्ञान है तो चार ज्ञान हुए और तीन दर्शन हो जाएंगे, तो सात उपयोग हो गया। हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उनको कौन सा ज्ञान होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ऐसे दो उपयोग हैं। बिना उपयोग का कौन होगा, जिसको ज्ञान नहीं दर्शन नहीं, ऐसा कौन सा जीव होगा? ऐसा कोई जीव ही नहीं होगा। वेरी गुड, चलो अब ये यहाँ से शुरू से करते हैं। पहला पेज देखो, दूसरे पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। बहुत पहले मैंने तुम्हें पत्र में लिखा था कि कर्म और गुणस्थान विषय पर मैं तुम्हें भविष्य में समझाऊंगी। अब मुझे बार बार विचार आ रहा है कि कर्म, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गना आदि विषयों पर मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। सच कहूं तो करणानुयोग का यह विषय बहुत गंभीर एवं गहन है, फिर भी उसके पढ़ने में बहुत आनंद आता है। द्रव्यानुयोग संबंधी हमने जो अध्ययन किया है, यानी आत्मा की जो बात हम समय सारादि ग्रंथों में सीखते हैं, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में भी हमने देखा था, जीव ऐसा है, उसके इतने गुण है, ऐसा ऐसा वैसा सारा, तो उसमें तथा भेद ज्ञान करने में, भेद ज्ञान करने ने क्या, जीव और अजीव, जीव और शरीर को भिन्न भिन्न पहचानना, अपने से राग आदि को भी भिन्न पहचानना, उसको कहते हैं भेद ज्ञान या भेद विज्ञान, भेद करना, यानी मैं एक बाजू और सारा ही पर जो है वो एक बाजू, ऐसे भेद विज्ञान करना, उसके बिना तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। पहले तो स्व कौन है और पर कौन है दोनों को पहचानना पड़ेगा, फिर पर को पर जानना पड़ेगा और स्व को स्व जानना पड़ेगा, और फिर स्व को ही जानते रहना पड़ेगा, तब आत्मानुभूति होगी। करणान योग के अध्ययन से अधिक बल मिलता है, अनेक भ्रांतियां दूर होती है, यानी मिथ्या मान्यताएं जो है हमारी, वो सारी गलत फहमियां जो है वो दूर हो जाती है। आज से मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, अपने को भूले हुए सभी जीवों की। समझे कहानी में क्या कैसी शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, ये सारा जो हमने देखा था जीव समाज में, कि हम कौन कौन से पर्याय में घूमते घूमते आए, अब उसका कारण क्या वो भी यहाँ देखेंगे। जीव तो अनादि से जीव ही था, है और रहेगा। उस दिन हमने देखा था ना, जीव का नाम ही वो जीवन ही है, भाव प्राण से तो हमेशा जीता रहेगा, तो वो हमेशा जीव ही रहेगा। जीव से कभी वो उद्गल रूप नहीं होगा, अजीव रूप नहीं होगा। परंतु भूल से इस जीव ने शरीर को ही जीव यानी मैं ऐसा मान लिया। शरीर कैसा है, चेतन है कि अचेतन है? अचेतन होते हुए ये अजीव है। जीव ने अपने को क्या मान लिया, यही मैं हूँ, यानी अपने को उसने अजीव मान लिया। भूल किसकी है, शरीर की कि जीव की? जीव की। हाँ, और इसकी कहानी बन गई। आज से यह कर्म कहानी अर्थात कर्म बंधन की कथा हम सुनेंगे। आचार्यों ने हमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, निमित्त, रागादि विकार, कर्म, गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि अनेक विषयों का स्वरूप बताया है। उसी का ज्ञान हम करने जा रहे हैं। यह सारा निमित्त और संयोगों का ज्ञान करने का प्रारंभ हम कर रहे हैं। ये किस किस का ज्ञान करेंगे इसके द्वारा, कर्म का वगैरह, यानी निमित्त का और संयोगों का। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्या ख्याल में रखना, कि अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कायम रखकर यह अभ्यास करना, यानी मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा ख्याल में लेकर, जो हमने अन्य ग्रंथों द्वारा पढ़ा है, द्रव्यान योग में पढ़ा है, वो मूलभूत तके की बात ख्याल में रखना और फिर ये सारा अभ्यास करना। 7 तत्वों का स्वरूप पुनः एक बार विस्तार से जानकर उस पर बारंबार चिंतन मनन करने के पश्चात इस विषय का ज्ञान करने से हमें भेद ज्ञान करने में बहुत मदद मिलेगी। जिसको ऑलरेडी भेद ज्ञान है, सम्य दर्शन है, उसकी भी दृढ़ता होगी। कल हमने देखा था दर्श विशुद्धि भावना, यानी सम्यक दर्शन जो है उसकी विशुद्धि और अधिक 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 बढ़ते ही जाना, उसको कहते दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन वो भगवान का दर्शन, वो दर्शन विशुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन की दृढ़ता होते जाना, उसको दर्शन विशुद्धि कहते हैं। तो ये भेद ज्ञान, एक बार भेद ज्ञान किया, आत्मानुभव किया तो काम होगा ऐसा नहीं। तो भेद ज्ञान कब तक भाता रहना चाहिए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। वो संस्कृत में श्लोक है, भावयेत् भेद विज्ञानम् तावत् भावये भेद विज्ञानम तब तक भेद विज्ञान भाना चाहिए कि जब तक ज्ञान पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा। इसमें शायद आएगा ये श्लोक आगे, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित ऐसे ज्ञान नाम है। भावये भेद विज्ञानम, हाँ, भावये भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, यानी निरंतर भाना चाहिए। कभी कभी भेद विज्ञान किया फिर छोड़ दिया ऐसे नहीं, भावये भेद विज्ञानम यानी भय विज्ञान भाना चाहिए। इदम अच्छिन्न धारया यानी निरंतर धारा प्रवाह रूप से उसको भाना चाहिए। कब तक, तावत यानी तब तक, यावत यानी जब तक, तावत यावत पराच्युतवा ज्ञान पर से छूट कर, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित यानी पूर्ण रूप से ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित नहीं होता है, तब तक भेद विज्ञान को भाना चाहिए, यानी भेद विज्ञान करना चाहिए। भाना है निकाली नहीं, हमें करना है ऐसा नहीं, एक्चुअल करना चाहिए। आज से मैं तुम्हें यह बंधन की कथा तो सुनाऊंगी, परंतु दृष्टि अपने अभेद ध्रुव स्वभाव पर रखकर सुनो। तुम्हें याद होगा कि बचपन में जब तुम दोनों कोई भय कथा डरावनी कथा कहानी सुना करती थी, तो मेरा हाथ पकड़ कर बैठती थी। उसी तरह अब किसको पकड़ना है? मैं जीव तत्व हूँ, ऐसे अपने आप को ख्याल में लेकर अपना स्वरूप पहचान कर फिर ये सारी संयोगों की बातें हमें सुनने, नहीं तो कर्म ने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया बातें आएगी। तो हाँ, ये पेज नंबर 89 पर अभी जो मैंने पढ़ा था ना, भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ये ऐसे सही बोला था। हाँ, ये लीजिए। उसी तरह अब मैं जीव तत्व हूँ ऐसा अपना स्वरूप निश्चित करने के पश्चात ही इस कहानी का प्रारंभ करेंगे। पत्र के प्रारंभ में हमने सिद्धों को नमस्कार किया है। सिद्ध भगवान, उनको कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कौन से कर्म है सिद्धों को? कोई भी नहीं है। और भाव कर्म है राग द्वेष भी होंगे, वो भी नहीं है। और नौ कर्म है शरीर मन वाणी कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं उनके पास। और हमारे पास कितना सारा है, तो कौन बड़ा? क्यों, उनके पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ, कचरा है। देखो, सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। इन तीन प्रकार के कर्मों का स्वरूप ही हमें पता न हो, पहले तो हमें द्रव्य कर्म क्या है पता नहीं होगा, भाव कर्म क्या पता नहीं है, नौ कर्म क्या अगर पता नहीं होगा, और हम खाली पीली कहेंगे ऐसा कि सिद्ध तो इन सारों से रहित है, तो सिद्धों का हमें पता चलेगा क्या स्वरूप है कैसा है? तो जो उनमें नहीं है उसको भी पहचानना पड़ेगा। यदि ये पता नहीं हो तो कर्म विरहित सिद्धों का स्वरूप तथा सिद्ध समान अपने शुद्धात्मा का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आ सकता। ये सिद्धों का स्वरूप क्यों हमें निश्चित करना है? उनको समझने के लिए उनको नहीं समझना, अपने को समझने के लिए उनको समझना। हम आईने के सामने क्यों जाते हैं? आईना देखने के लिए कि मुख देखने के लिए? मुंह आईने में देखने के लिए जाते हैं ना। ऐसे सिद्धों के अरिहंत सिद्धों के सामने क्यों जाते हैं? कि वहां जाकर पता चलता है अरे अपना भी स्वरूप ऐसा। तो इसलिए हम उनके दर्शन भी करते, स्मरण करते, उनका गुणों का चिंतन करते हैं। सरल शब्दों में कहना हो तो कारमान वर्गना नाम के पुद्गल स्कंधों से बना हुआ द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म है वो पुद्गल का कर्म, ये किससे बना है? कारमान वर्गना से। जीव के मोह राग द्वेष परिणाम भाव कर्म है और शरीर मन वाणी आदि जीव के नौ कर्म है। प्रस्तुत प्रकरण में यानी अभी जो वर्तमान हम जो सीख रहे इस प्रकरण में, करंट टॉपिक में, जहाँ जहाँ कर्म शब्द आएगा वहाँ द्रव्य कर्म के बारे में यह चर्चा है, ऐसा तुम समझ लेना। यानी यहाँ जो हम कर्म बंधन की बात करेंगे, यहाँ द्रव्य कर्म की बात चल रही है। जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये सारा अभी टॉपिक चल रहा है ना पंचाध्याय में, कि अनादि से क्यों है, वो सारा हमने वहाँ न्याय से सिद्ध भी किया था। अर्थात जीव और कर्म का बंध अनादि से है, किसी ने जो जबरदस्ती से यह बंद कराया नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जीव पहले सिद्ध समान शुद्ध था और बाद में कर्म आकर उससे बंधे हो। ये हमने देखा था ना पंचाध्याय में, बात उन्होंने भी सिद्ध की थी। यदि पहले शुद्ध और बाद में कर्म आए तो फिर मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं करेगा, क्योंकि मोक्ष होने के बाद भी अगर फिर शुद्ध अवस्था वाले को भी कर्म बंद हो जाए तो मोक्ष के लिए इतना पुरुषार्थ करने का क्या फायदा? बराबर। जैसे खदान में सुवर्ण पाषाण पाया जाता है, यानी सोना, ऐसे प्योर सोना नहीं मिलता, वो सोने की खान होती है खदान, तो उसमें क्या वो मिक्स होता है मिट्टी के साथ, पत्थर होते हैं उसके, सुवर्ण के ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें मिट्टी भी और सारा अशुद्धि भी पड़ी है और सोने का कुछ अंश उसमें रहता है। वहाँ किसी ने सोना और पत्थर का मिश्रण यानी मिलान तो किया नहीं है, अनादि से ही उनकी संयुक्त अवस्था पाई जाती है। उसी तरह जीव और कर्म भी अनादि से बंधे हुए हैं। यानी जीव और कर्म का बंध है पहले यह सिद्ध किया हमने, प्रत्येक जीव से अनंतानंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं। यानी जहाँ यह जीव है, इतना है ना जीव, तो यहीं पर अनंतानंत कर्म परमाणु उसके प्रदेशों के साथ बंधे हुए हैं। इनमें जीव द्रव्य तो एक है, अरूपी है, चेतना गुणमय है। ये वाक्य भी हमने पहले पढ़ा था ना, मैं तो एक जीव द्रव्य चेतना गुण का धारी, अरूपी असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार वाला, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वाक्य है। देखो ये तो इनमें जीव द्रव्य तो कितने है? एक है, अरूपी है, चेतना गुणमय है, संकोच विस्तार शक्ति से युक्त असंख्यात प्रदेशी है, और कर्मपिंड कैसा है? कर्मपिंड जो है वो अनंतानंत परमाणुओं का समूह है, रूपी है, अचेतन है। कर्म में कुछ जानने की शक्ति है क्या? वैशाली नहीं है। तो वो कैसे जानता है किस जीव को बंधना, किस जीव को कैसा फल देना, वो भी सारा सुनेंगे हम। इसमें भी आती है बात, ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। वो कैसा होता है उसी की तो हम कहानी सुनेंगे। कर्म में जानने की शक्ति यानी ज्ञान नहीं है। इस कर्म पिंड में से प्रत्येक समय में कुछ परमाणु छूट कर निकल जाते, अनादि से बंद है ना। अभी समझो इतना सारा कर्मों का यहाँ खजाना है, उसमें से कुछ तो निकल जाते हैं और कुछ नए नए आते रहते हैं। कल हमने देखा था ना, ये जीव इतना है और इसमें ये बहुत सारा कर्म बंधा हुआ है इसके साथ। अभी हर समय में कुछ कर्म परमाणु निकल के चले जाते हैं, जीव को छोड़कर चले जाते हैं, और दूसरे कुछ परमाणु नए नए आकर जीव के प्रदेशों में मिलते हैं, और यहाँ का ये जो कर्म का पिंड है वो बना रहता है। नए नए आते हैं, पुराने पुराने चले जाते हैं, इस तरह से ये कभी खाली नहीं होता। जैसे पानी की टाँकी है, उसमें ऊपर से भी 5 नल लगाए और नीचे भी है 5 नल, उसमें से भरी टाँकी और ऊपर से भी उसमें पानी गिरता है, नीचे से भी चला जाता है, तो कब खाली होगा? कभी नहीं होगा। वैसे कर्म और जीव का बंधन चलता रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि बाय चांस ज्यादा निकल जाए और ऊपर सब बंद हो जाए। वो करने का एक ही तरीका है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तब ऊपर का एक एक नल बंद बंद होते जाएगा और नीचे से ज्यादा नल शुरू हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि काकी पूरी खला, वैसे कर्म पूरे निकल जाएंगे तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद भी कर्म बने रहते, पूरे निकल नहीं जाते। अरिहंत भगवान के भी कर्म है कि नहीं? 8 कर्म में से 4 कर्म बाकी है उनके, 4 घाती कर्म ही निकल गए। ये सारी बातें इसमें आएगी क्रम से। कर्म क्या है, बंध क्या है, उदय क्या है, ये सारी डेफिनेशन हम देखेंगे। उसी तरह प्रत्येक समय में कुछ नए परमाणु आकर उसमें जुड़ जाते हैं, यानी पुराने कर्मों में नए नए जुड़ते हैं और उसमें से कुछ कुछ निकलते चले जाते हैं। परमाणु आकर पुराने कर्म के साथ जुड़ जाते हैं यानी बनते हैं, उसे बंध कहते हैं, और परमाणु छूट कर निकल जाते हैं उन्हें उदय कहते हैं। उदय किसको कहना? परमाणु छूट कर निकल जाना उसको कहते हैं उदय, और परमाणु आकर पुराने कर्म में जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बंध। तो बंधन, बंध और उदय दो शब्द समझ में आए। उदय यानी क्या? सब उदय कहते हैं, नहीं तो पड़े रहेंगे जीव के साथ, तो उसको कहते हैं सत्ता में है, और जब सत्ता में पड़े उसका कुछ फल जीव को नहीं मिलता। कितना भी तीव्र कर्म क्यों न हो, कैसा भी बुरा या कैसा भी अच्छा हो, उसका फल मिलता ही नहीं जीव को। जब छूट कर निकल जाएगा जब उसका एक फल मिलता रहता है, वो कैसा होगा क्या होगा ये सारी बातें हम क्रम से सीखेंगे। एक एक शब्द का अर्थ देखते देखते आगे जाएंगे, क्योंकि ये शब्द हम यूज तो करते हैं, ये कर्म का उदय है, परंतु उदय यानी क्या उसका पता नहीं है। देखो बंध के 4 भेद है। अभी जब बनते हैं, बनते यानी क्या? कर्म परमाणु आकर जीव के पुराने कर्म में मिलते हैं, यानी जीव के प्रदेशों में रहते हैं। उसके 4 प्रकार हैं। अब देखो ये ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगी, यहाँ भी पढ़ना और ध्यान भी देना। देखो पुस्तक में देखते हैं तो आंखों से भी देखते हैं और सुनते भी है, तो दोनों तरफ बराबर ख्याल रखना। प्रदेश बंध कहो आप सब, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चार हुए। अंजू बोलो कौन से चार है। और हाँ, आप बोलो वरुण, देख के बोलो चलेगा। वैशाली, सबके ख्याल में आए, चार प्रकार के बंध होते हैं। जब कर्म का बंध होता है, अब ये इसका अर्थ समझेंगे, तब विवक्षित संख्या में परमाणु आते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ परमाणु वो आते हैं और पुराने कर्मों में जुड़ जाते हैं, जीव के साथ बनते हैं, उस संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। प्रदेश है ने एक परमाणु को एक प्रदेश का, ऐसे बहुत सारे परमाणु तो कितने परमाणु आए उसको कहेंगे प्रदेश बंध। यह संख्या अनंत है, दो चार पांच नहीं है, अनंत की संख्या में हर समय परमाणु आते हैं। निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है अंतर बिना, बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसे निरंतर यानी प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उन्हें समय प्रबद्ध यानी एक समय में बंधे हुए कहते हैं। क्या कहते हैं एक समय में जितने बंधे उसे, दीपाली, समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध, बद्ध यानी बंधना, प्र यानी विशेष रूप से बंधना, यानी एक समय में बंधना, तो उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। यानी एक समय प्रबद्ध कितना होगा, तो अनंत परमाणुओं का होगा, उतने ही परमाणु, अर्थात एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु हर समय छूट कर निकल जाते हैं। यानी हर समय कितने परमाणु निकल जाते हैं, अनंत, आते भी अनंत है और जाते भी अनंत है और पड़े रहेंगे अनंत अनंत अपने साथ। तो छूट कर निकल जाते हैं, यानी उन क्या होता है छूट कर निकल जाने, अभी यहाँ बैठे तो ये छूट कर वहाँ चले जाएगी, ऐसी बात है, पड़े रहेंगे वहाँ पर, परंतु उनका कर्मपना नहीं रहता। पहले कारमाण वर्गणा थी, परमाणु रूप थे, उसके कर्म रूप अवस्था हुई, अब कर्म से फिर दोबारा कारमाण वर्गणाएं होगी या सादे परमाणु हो जाएंगे या अन्य वर्गणा रूप उनका परिणामन कुछ भी उन परमाणुओं का हो जाएगा, यहीं पड़े रहेंगे या निकलकर छूटकर बाहर भी चले जाएंगे, वो परमाणु अपनी योग्यता से जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, परंतु अभी उनका और जीव का कोई भी संबंध ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहेगा, भले वो वही उसी क्षेत्र में क्यों न पड़े रहे, एक क्षेत्र में। कल देखा था ना कि एक एक कर्म परमाणु के साथ अन्य अन्य अनेक परमाणु जुड़े हुए होते, चिपके हुए, परंतु वो कर्म नहीं कहलाते। हाँ हाँ, बहुत सारी है, जैसे तेजस, जैसे ये शरीर है, अभी पाउडर लगाई ऊपर से, तो उसको शरीर कहते हो क्या, हम वो शरीर है क्या हमारा, नहीं है ना, फिर भी शरीर के साथ चिपका हुआ है ना, और समझो कुछ काला लग गया यहाँ, वो तो शरीर का अंग नहीं है, या आते आते धूल चिपक गई, वो तो शरीर का अंग नहीं है, फिर भी शरीर के साथ चिपका हुआ है वो। वैसे कारमाण वर्गणा या अन्य तेजस वर्गणा, इनके साथ अन्य भी परमाणु या औदारिक शरीर के जो आहार वर्गणा है उसके साथ अन्य भी परमाणु चिपके, एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत परमाणु चिपकते हैं, बिना जीव के रिलेशन कोई, जीव ना उनको ग्रहण करता है ना छोड़ता है, वो अपने आप आते चले जाते हैं। तो उसका नाम भी हमने सुना था, क्या, विसरसोपचय, इसमें आगे आएगी बात। अब हम बिल्कुल सिंपलिसिटी से आगे बढ़ेंगे, ये पहले ये चार शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर एक 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 करके ये कर्म की अगली सारी थ्योरी देखेंगे, उनका कर्मपना नष्ट होकर वे अकर्म दशा को प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति बंध का स्वरूप देखेंगे। अभी हमने किसका स्वरूप देखा था? प्रदेश बंध का, ख्याल में आया ना? संख्या को प्रदेश बंध कहेंगे। अब प्रकृति बंध का स्वरूप देखेंगे। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। अनंत कर्म परमाणु आकर पुराने कर्म पिंड के साथ बनते हैं, उस समय उनका आठ भिन्न भिन्न प्रकारों में विभाजन होता है। वो अपने आप विभाजन होता है, कोई वहाँ बैठा नहीं है उसको डायरेक्शन करने के लिए। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो अन्न खाया उसमें से क्या क्या बनता है? लहू भी बनता है, लोही बनती है ना, खून बनता है, हड्डी बनती है, चाम बनता है, बाल बनते हैं, आंसू बनते हैं, सारा कुछ बनता है उसमें से। वैसे इसके आठ भिन्न भिन्न प्रकार भेद हो जाते हैं, कर्म के ये आठ भेद होते हैं, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। कर्म के अपने स्वभाव के कारण, यानी कर्म क्या फल देते हैं उसके कारण उनके आठ भेद होते हैं। प्रकृति का अर्थ उसका स्वभाव क्या है, जैसे ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है, तो ज्ञान पर आवरण, दर्शन का वैसे, ये सारी बातें आएगी। तो उस स्वभाव के अनुसार ये उसके आठ ग्रुप बन जाते हैं, इन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, यानी मेन डिवीजन। मूल प्रकृतियों के नाम है, देखो ये आठ नाम मैं पूछूंगी अभी। ज्ञानावरण बोला आप सब, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। कौन कहेगा मुझे, याद हो गया इतने में? हाँ बोलो। वेदनीय, ऐसे ये आठ हुए। इन मूल प्रकृतियों के और भी भेद किए जाते हैं, यानी सब डिविजन्स करते हैं हर एक के। जैसे ज्ञानावरण के उसमें और भेद किए, दर्शनावरण के और भेद किए, उसको कहते हैं उत्तर प्रकृति। क्या कहते हैं दीपाली? और जो मेन आठ डिविजन्स, उसको क्या कहते हैं? मूल प्रकृति, यानी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। ख्याल आया? कर्म जब बनते हैं उसी समय यह निश्चित होता है कि वे जीव के साथ कितने काल तक रहेंगे, उस काल को कर्म की स्थिति कहते हैं। और बंध के इस भेद को स्थिति बंध कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, किसी एक समय में कर्म का बंध किया, बंध किया तो वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे और बाद में छोड़कर चले जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? स्थिति, कर्म की स्थिति। और वो जब बंधा, कर्म जब ही बंधा, तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं जीव के साथ इतने साल तक रहूंगा, बाद में छोड़कर निकल जाऊंगा। जब छोड़कर निकल जाता है तब उदय कहते हैं, और तभी उसका फल मिलता है। अंदर पड़े पड़े उसका फल नहीं मिलता, तो उसको स्थिति कहते हैं। और जो बंध हुआ ना, तो बंधते समय जिसमें जो स्थिति पड़ी उसको कहते हैं स्थिति बंध। ये बनते समय ही सारा निश्चित है। जितने संख्या में परमाणु आए वो कहेंगे प्रदेश बंध, उसके आठ डिविजन्स हुए उसको कहेंगे प्रकृति बंध। अब उसमें जितनी स्थिति है उसको कहेंगे स्थिति बंध, और वो क्या और कितना फल देंगे उसको कहेंगे अनुभाग बंध। बंध तो हुआ एक ही, उसी का चार प्रकार से हमने विवेचन किया। ऐसा नहीं कि प्रकृति बंध कोई अलग है, जितनी संख्या में परमाणु आए वे ही तो डिवाइड हुए ना आठ में, और उन्हीं में तो स्थिति पड़ी और वे ही तो फल देंगे। ऐसा नहीं कि प्रकृति बंध वाले परमाणु अलग है, प्रदेश बंध वाले अलग है, स्थिति बंध वाले अलग है, और अनुभाग वाले बंध वाले अलग है। ऐसे परमाणु तो अलग अलग नहीं है, जितने परमाणु आए वे ही आठ रूप डिवाइड हुए, उसी को हमने प्रकृति कहा। और उनमें ही कितने काल तक बंधेंगे ऐसी जो कंडीशन है उसको स्थिति बंध कहा, और उन्हीं परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसको अनुभाग बंध कहा। ख्याल है? ये बंधने का जरा ख्याल आएगा तो बाकी सारा आपके आसान हो जाएगा। उसको स्थिति बंध कहते। तीसरी लाइन, अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर कर्म छूट जाते हैं, खिर जाते हैं, उसे उदय कहते हैं। पहले हमने क्या देखा था, पहले तो कर्म बंधा, जब भी बंधा तभी निश्चित हुआ कितने काल तक रहेगा, उसको कहेंगे हम स्थिति बंधा। उतनी स्थिति पूरी होने के बाद कर्म जीव को छोड़कर चला जाएगा, उसको कहेंगे उदय। जब उदय में आता है तभी उसका फल मिलता है। कर्म का उदय होता है तब उस कर्म का फल यानी अनुभाग या रस, उसको तीन नाम है, फल भी कहेंगे, अनुभाग भी कहेंगे, रस भी कहेंगे, विपाक ऐसा भी नाम आता है शास्त्र में, कर्मों का विपाक। उस सब का अर्थ एक ही है, वो जीव को मिलता है। यह अनुभाग भी कर्म बनते हैं उसी समय निश्चित होता है, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। यानी अनुभाग बंद हुआ तभी तो जीव को कुछ उसका फल नहीं मिला। जब वो जीव को छोड़कर चला जाएगा तब उसका फल जीव को मिलेगा। हम कहते ना, तो अभी इतना पाप करके धन कमा रहा है, वो धन तो भले भोगे के न भोगे परंतु पाप से ये कर्म बंधा, वो भविष्य में जब वो कर्म छूटकर चला जाएगा तब उस पाप का फल भी जीव को भोगना पड़ेगा। छड़ाला में आता है ना, रागादि वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में भी कैसे दुख रूप है, क्योंकि राग के कारण जो कर्म बंधे वो भविष्य में बस जब छोड़कर चले जाएंगे तब उसका फल भी जीव को मिलेगा, इसलिए वो भविष्य में दुखदायी ऐसा कहते हैं। राग वर्तमान में तो दुखदायी है ही, क्योंकि राग है वो इच्छा है, राग कहो द्वेष कहो ये सारे कषाय कहो, वर्तमान में तो उसी के कारण दुख है जीव को। अकेले वर्तमान में ही दुख देते ऐसा नहीं, उनके कारण जो कर्म बनते हैं उसका फल जब जीव को मिलता है, वो कर्म उदय में आएंगे तभी तब भी वो जीव को दुख देते हैं, क्योंकि नए राग में वो निमित्त होते हैं। इस तरह ये तो वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य के लिए भी दुखदायी है। तुम पूछोगी कि स्थिति और अनुभाग को कौन निश्चित करता है, कर्म तो अचेतन है, ये अभी प्रश्न पूछा था ना वैशाली, अब उसका उत्तर आएगा। देखो, कर्म तो अचेतन है, उसे कैसे पता चलता है कि कितना और क्या फल लेना। कर्म का आठ मूल प्रकृतियों में कौन विभाजन करता है, कर्मों की संख्या ने प्रदेश बंधक कौन लक्ष्य करता है, ये प्रश्न तो हमें पढ़ते हैं ना, कि कौन करता होगा, ऐसा कोई वहाँ बैठा है, जो अन्यमति मानते हैं ना, कोई वहाँ चित्रगुप्त बैठा है वो सारा आपका हिसाब किताब करता है, ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि दूसरों के नौकरी करता रहेगा, ऑनरेबल सुपर सर्वेंट। सुनो, कर्म की स्थिति और अनुभाग बनते हैं उनमें जीव के मोह राग द्वेष परिणाम निमित्त है। मोह अर्थात मिथ्यात्व और राग द्वेष अर्थात कषाय। मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों को मिलाकर कषाय कह दिया जाता है। देखो, शास्त्र में कभी कभी बात आती है कि कषाय से बंध होता है, वह मिथ्यात्व का अलग नाम नहीं लेते, परंतु मिथ्यात्व और कषाय को मिलकर इन शॉर्ट कषाय कह दिया जाता है। फिर भी हमें वो बराबर समझना चाहिए कि वहाँ मिथ्यात्व भी है उसके अंदर गर्भ। इसलिए शास्त्र में कथन आता है कि कषाय के कारण यानी निमित्त से कर्म की स्थिति और अनुभाग बनते हैं। शास्त्र के इस कथन का गलत अर्थ निकाल कर देखो, मात्र कषाय से ही बंध होता है, मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर है कहने का दुस्साहस तुम नहीं करोगी, इस बात का मुझे विश्वास है। अभी समाज में ऐसे कोई मान्यता चल रही है कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, कषाय से ही बंध होता है, तो उसके लिए शास्त्र जो बंध तो मिथ्यात्व से ही हो रहा है, सत्तर कोड़ा कोड़ी का होता है ना, और मिथ्यात्व नहीं होने पर हम देखते कि इतने प्रकृतियों का बंध रुक गया, तो मिथ्यात्व से भी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि मिथ्यात्व और कषाय इन दोनों को मिलकर कषाय ऐसी संज्ञा दी जाती है। और जब कहते हैं हम स्थिति अनुभाग काय से बनते हैं तो वहाँ हम कहेंगे कषाय से, परंतु कषाय के साथ मिथ्यात्व भी है वहाँ। हमने देखे ना बंध के पांच प्रकार कौन से हैं, किससे किससे बंध होता है, बंध के कारण मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। जब कषाय से हम कहते हैं ना कषाय से स्थिति और अनुभाग होता है, तो कषाय से स्थिति अनुभाग यानी मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय चारों से स्थिति और अनुभाग बनते हैं, क्योंकि वो अंत्य दीपक समझना उसको, वहां तक के सारे उसमें ले लेना। और जब योग को कहेंगे तो योग योग के साथ भी चारों आएंगे, अकेला योग इसके बाद होगा, बिना कषाय के योग वो बाद में ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में होगा। तो हम खाली योग से कहेंगे तो उसको भी ये कषाय सहित वाले योग है वह। देखो अब प्रश्न है प्रदेश बंद और प्रकृति बंद का, इन्हें कौन विभाजित करता होगा और इनकी संख्या कैसे निश्चित होती होगी। हम आज तक हर समय अनंत परमाणु बांधते आए हैं, परंतु हमें तो उसका पता ही नहीं था। कर्म को बांधने और छुड़ाने वाला कोई ईश्वर या परद्रव्य हो नहीं सकता, इस बात को भी हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। कर्म स्वयं ही इन आठ प्रकृति रूप विभाजित होता है, उसका अन्य कोई भी करता नहीं है। जिस तरह हम भोजन ग्रहण करते हैं, तब उस अन्न का रूपांतर खून हड्डी चर्बी स्नायु विष्ठा आदि रूप होता है, उसका कर्ता अन्य कोई भी नहीं है। उसी तरह कर्म स्वयं ही मूल प्रकृति एवं उत्तर प्रकृति रूप विभाजित होता है। मूल प्रकृति यानी वो आठ, और उत्तर प्रकृति यानी उसके और सब डिविजन, जैसे ज्ञानावरण पांच प्रकार का है, उसमें जो कषाय जो है इतने प्रकार के कर्म है, कषाय कर्म उसके इतने डिविजन, ये सारा ऑटोमेटिक उसकी डिविजन हो जाती है। कर्म परमाणुओं की संख्या यानी प्रदेश भी उसके अपने कारण से ही बनते हैं। इन प्रदेश बंध और प्रकृति बंध में जीव का योग निमित्त है। अब योग क्या है उसको देखेंगे, इसलिए पहले योग क्या है जानना जरूरी है। पहले हमने सारी मार्गना पढ़कर आए ना, तो थोड़ा अभी आसान हो जाए, क्योंकि योग मार्गना भी हमने देखी थी, मनोयोग वचन योग का योग आदि देखे थे ना, अभी यहाँ उसके डिटेल्स लिखे है। योग यानी क्या है एक्चुअल, हमारी लौकिक भाषा में योग शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे आज धन का योग दिखता है, हम कहते ना अरे हमको ये लाभ यानी धन का योग है, देखो तो कैसा योगा योग है। या कोई कहता है योगाभ्यास के कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, कोई कहे कि विशिष्ट व्यक्ति बहुत बड़ा योगी है, बीमा कंपनी भी कहती है योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी आपकी योग क्षेम यानी आपकी क्षेम कुशल हम वहाम्य, यानी मैं उनकी खबरदारी लेता हूँ या उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी आपके योग क्षेम का हम निर्वाह करेंगे। इनमें से कोई भी योग यहाँ अभिप्रेत यानी इष्ट नहीं है। जीव के प्रदेशों का अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन होना, प्रदेशों का सकंप होना, परिस्पंदन होना, चंचल होना योग कहलाता है। प्रदेशों के कंपन को द्रव्य योग कहते हैं। इस द्रव्य योग के कारण जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव योग कहते हैं। जिस तरह चुंबक पाषाण में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसी तरह आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसे योग कहते हैं। ये ख्याल में है ना, जीव के आत्म प्रदेशों में जो चंचलपना होता है उसको योग कहते हैं, और उसके कारण कर्म परमाणु यानी प्रकृति और प्रदेश बनते हैं। उसी के साथ खाली योग नहीं है अपना, योग के साथ ये सारे है ना, मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय यानी ये सारे कषाय भी है, तो उसके कारण उसमें स्थिति भी पड़ती है और अनुभव भी पड़ता है। योग के कारण प्रदेश और प्रकृति, उसके साथ कषाय भी है कि हमारा अकेला योग है, हम खाली योग वाले हैं अकेले ग्यारहवे बारहवें वाले जैसे, तो उसके साथ कषाय भी है, तो कषाय के कारण उसमें बंध में स्थिति और अनुभव भी पड़ता है। दसवें गुण स्थान तक स्थिति अनुभाग प्रदेश और प्रकृति चारों ही का बंद होगा। दसवें के बाद बंद होगा कि नहीं होगा, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें वाले को होगा, क्योंकि वहाँ योग है, तो उसमें स्थिति और अनुभाग होगा क्या, यानी वो सब आए और चले गए, एक समय भी रुकेगा नहीं वहाँ, यानी आया और दूसरे समय में चलेगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसको हम स्थिति कहेंगे फिर। और उसमें अनुभाग होगा कि नहीं, केवली जो सातावेदनीय कर्म बांधते हैं उसमें कितना रस होगा, फल देने की कितनी शक्ति होगी, बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि वो तो केवली बांध रहे हैं, क्यों कषाय ही नहीं है। तो नाम से और नेम से वो सातावेदनीय भी है, कोई ऐसा मानेगा कि उसमें वो बहुत अनंत शक्ति होगी उस फल देने की, ऐसा नहीं है, अनुभाग उसमें पड़ता ही नहीं है। जो पहले वाले बंदे हैं वो छूट जा रहे हैं ना, उसका उनको जो कुछ फल है वो है। अब तुम्हारे ख्याल में आया होगा कि बंद के चार भेदों में से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होने में योग निमित्त है, और स्थिति बंद अनुभाग होने में कषाय, इन ब्रैकेट क्या लिखा है, मिथ्यात्व राग और द्वेष सबको लेना वहां निमित्त है, इन चार बंधों और आठ डिवीजन हुए के चार हुए के वो तो कुछ हमारे दुख का कारण नहीं है, कितनी संख्या में आए वो भी कुछ दुख का कारण नहीं है, यह स्थिति कितनी पड़ी। हाँ हाँ एरिया पता सरो कहा ना उनको, हाँ उसको बंद भी कहेंगे और वो छूट गया ऐसा भी कहेंगे, उसी को कार्य का एक हुआ, वो तो बंधा ही, यानी जीव के प्रदेशों में टिका ही नहीं, आया और चला गया, जैसे ट्रैफिक आया और चला गया, रुका ही नहीं वो। स्थिति अगर पड़ती, अनुभाग अगर होता तो हम कहेंगे ना कि वो रुका वहाँ, फिर उसने फल दिया, उससे छोड़ कर चला गया। हाँ एक समय का बंदे ने जैसे रेती आप फेंकते तो टिकते नहीं ना वहाँ, दीवार पर आप रेती फेंके तो वहाँ कितनी चिपकती है, चिपकती नहीं, सूखी रेती वो चिपकती नहीं वहाँ, वैसे वहाँ जो बंद आत्म प्रदेशों के साथ उसका कुछ बंद होता ही नहीं है, बस वो आए और चले गए। ये आना जाना भी वो समझाने के लिए सारे शब्द है, कहीं वहां से यहाँ आते और यहाँ से वहां जाते ऐसी कोई बात नहीं। तो एक समय में वो पूरा कार्य हुआ ऐसा समझो, उसके दो भेद करो ही मत। हाँ एक कार्य देखो, अभी यहाँ क्या कहना चाहती है जरा ख्याल में ले लो, इसमें से कितने प्रदेश बने हैं, उससे तो कोई सुख दुख नहीं जीव को, कौन सी डिवीजन हो गई और कहाँ बैठ गई उससे कोई सुख दुख नहीं होता है, कितने काल तक वो जीव के प्रदेशों में बंधा रहेगा उससे भी जीव को कोई उसका फल नहीं मिलता है। तो कर्म का जो अनुभाग अर्थात फल है उसमें यदि जीव जुड़ता है, अभी कर्म का कुछ विशेष फल मिला, आठों कर्मों का ही उदय चल रहा है, यानी आठों ही कर्मों का हर समय फल मिल रहा है, उसमें जुड़ता है, यानी क्या होता है कि उसको अपने रूप मानता है। अभी नाम कर्म के उदय में विशिष्ट शरीर मिला तो ये शरीर मैं हूँ मानता है, जुड़ना यानी क्या, ज्ञानावरण कर्म के कारण ज्ञान की हीनता हुई तो यही मेरा स्वरूप मानता है, ऐसे अन्य अन्य सारे कर्मों का जो फल है उसी में आत्मबुद्धि होती है। चारित्र मोहनीय कर्म के कारण वहाँ जो राग द्वेष होते हैं ये मेरे है, मेरा स्वरूप है, ऐसा मानता है। तो कर्मों के फल में जुड़ना है ने उसके फल को आत्मस्वपने से उसको स्वीकार करना, तो ऐसा अगर जुड़ता है तो क्या होता है कि पुनश्च मोह राग द्वेष करता है, मिथ्या तो हुआ ना उसका, कि कर्म का फल है उसमें ये शरीर मैं हूँ ऐसा माना, ये पुराने कर्म का उदय हो रहा है, अब जीव ने वहाँ मिथ्या तो राग द्वेष किए, यदि जीव न करे तो पुनः कर्म नहीं बनेगा, परंतु जीव जब जब मोह राग द्वेष करेगा तब तब उसके कर्म बंध भी होगा। और तो द्वेष करता है तो वह जीव दुखी होता है और उससे नया कर्म बंध भी होता है। देखो जरा ध्यान से सुनो, अब जीव दुखी क्यों है उसकी बात है। जीव जो दुखी है वह स्वयं के मोह राग द्वेष परिणामों के कारण दुखी है और मानता क्या है, कर्म ने मुझे दुखी किया है, मुझे ऐसा कर्म का फल मिल रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसे ऐसे संयोग मिल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। यही मूलभूत मान्यता उसकी दोष है कि ऐसे ऐसे संयोग के कारण मुझे दुख हो रहा है। परंतु दुखी क्यों है, अपने ही मोह राग और द्वेष के परिणामों के कारण वो दुखी है। जीव की तो जीव के पर्याय कर्म करेगा क्या, जीव करेगा स्वयं, तो जीव स्वयं अपने अपराध से सुखी दुखी हो रहा है। तब वहाँ सामने निमित्त रूप से हो कोई भले परद्रव्य हो कर्म हो या कोई भी हो, परंतु निमित्त कर्म कार्य में कुछ नहीं करता अन्य द्रव्य के, ये हमने सीखा था ना निमित्त उपादान में। तो जीव जो दुखी है वो अपने परिणामों के कारण दुखी है, कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है अचेतन है। बेटियों अपने जीवन में हर्ष शोक के अनेक प्रसंग आते हैं, उस समय हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे मन में उस व्यक्ति के संबंध में राग या द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग भी किसी के प्रति प्रेम बहुत उमड़ आता है या किसी के प्रति द्वेष होता है, क्यों, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदार मानते हैं और उस व्यक्ति से हमारे संबंध जुड़ते या टूटते हैं। ऐसे प्रसंग में जब हमें शास्त्र वचन सुनने से या पढ़ने से पता चलता है कि वह व्यक्ति निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता है। यानी सच्चा निमित्त कौन है, तब यानी डेफिनेट निमित्त कौन है, क्योंकि हमें निमित्त का भी पता नहीं है। अनिष्ट परिणाम करेंगे तो वह हमारा मिथ्या तो परिणाम होगा, कर्म हमें जबरन मिथ्या तो भाव करने के लिए विवश नहीं कर सकते। कल बात आई थी ना पंचाध्याय में कि यह जीव मिथ्या तो कर्म के वश होकर या कषाय कर्म के वश होकर स्वयं मोह राग द्वेष करता, कर्म इसको विवश नहीं करता, कर्म इसको जबरदस्ती नहीं करता, जीव ही स्वयं उसमें जुड़ जुड़ कर वैसे परिणाम करता है। जीव चाहे तो ये तत्व का अभ्यास के द्वारा विचार द्वारा सच्चा ठीक तत्व निर्णय करे तो कैसा भी उदय है, हमने देखा था वो तो क्षोभम लब्धि विशुद्ध लब्धि देशना लब्धि प्रायोग लब्धि ये सारे में तो अनंत गुना विशुद्धि अनंत है। क्या होता है वहाँ कि जो अशुभ कर्मों का जो अनुभाग है, रस देने की जितनी वहाँ शक्ति है वो अनंत विभाग अनंत विभाग अनंत विभाग ऐसी घटती चली जाती है अपने आप, जीव को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये सारा काहे से होता है, ये तत्व निर्णय में तो अभी जुड़ रहा है, अभी तो समय दर्शन बहुत आगे की बात है, उसके पहले ये सारा कार्य हो चल रहा है इसका। तो उसको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि मैंने ऐसे तीव्र कर्म बांधे है तो अभी क्या होगा, तो उसको तो बस तत्व ज्ञान में जुड़ना है और कर्म की तरफ देखो ही मत, तो भी उसमें से सारा उसका रस मंद 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 मिथ्यात्व का भी मंद रस मंद पड़ते जाता है। इसमें जुड़ने वाले का वो सत्तर कोड़ा कोड़ी वाला नहीं रहता मिथ्यात्व अंदर। हमने देखा था कि जब देखना लब्धि के बाद उस पर हमेशा विचार करते रहता है तो वो अंत कोड़ा कोड़ी इतना हो रह जाता है। ये कर्म में सारा ऑटोमेटिक होता है और जितने सबसे बड़े से बड़े जो अशुभ कर्म है तीव्र में तीव्र वो सबसे पहले भाग जाते हैं। सबसे अधिक कौन सा है, मिथ्यात्व, और सबसे पहले भागने वाला कौन है, मिथ्यात्व, अपने साथ अनंतानुबंधी को भी ले चलता, तो उसके बाद तो ये नहीं के बराबर रह जाते बाकी सारे, तो ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। बस तो जीव को अपना स्वरूप पहचानना है और उसको जानते रहना है। कर्म को वो नहीं भी जानेगा तो भी वो ऑटोमेटिक चला जाने वाला है, परंतु यहाँ हम क्यों जानते हैं, क्योंकि वो भेद विज्ञान हमारा स्पष्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ जानने से फायदा होता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा कुछ बिना जाने भी उसको केवल ज्ञान भी हो जाएगा। शिवभूति मुनि की ऐसी बात आती है ना कि बहुत सूक्ष्म नहीं था परंतु मूल पकड़ा था कि मैं भिन्न हूँ, ये सारा भिन्न है। इष्ट अनिष्ट माने हुए पदार्थों को देखकर माने हुए इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं लिखा है। जिन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट हमने मान लिया है उन पदार्थों को देखकर वर्तमान में हम राग द्वेष हर्ष शोक करते हैं, वह हमारा कषाय भाव है। कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखो ये बहुत महत्व की बात है सारी, और क्योंकि अपने अभिप्राय में ये सारी पड़ी और अपने को ही निकालनी है, कोई दूसरा हम हमारे लिए निकाल नहीं देगा। ये अपने को ही अपना अवलोकन करना है कि हमारे अभिप्राय में कहीं ऐसी बात है क्या, तो अपने को निकालना। अपने किसी दोष या भूल के लिए जब हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उस दोष को टालने का हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोष दूसरे का ही मान लिया, अपना दोष कबूल ही नहीं किया तो हम उसको काय को निकालेंगे। हम अपने स्वयं के दोष को दोष रूप में स्वीकार करना ही दोष दूर करने के लिए उठाया हुआ पहला कदम है। हमें अपने को ही समझाना है कि हे जीव, वर्तमान काल में तू जो अच्छा या बुरा फल भोग रहा है वह तेरे पूर्व में किए हुए कषायों का ही फल है, क्योंकि उन कषायों के निमित्त से ही उस समय बंधे हुए कर्म में अनुभाग बंध हुआ था, स्थिति बंध हुआ था। वह स्थिति पूरी होने के कारण अब वह फल तुझे मिल रहा है। अभी क्यों फल मिल रहा है? कोई कहता ना, अभी जन्म से तो हम इतने पूजा पाठ करते आए, हमने कोई ऐसा बुरा कार्य भी नहीं किया है, फिर हमें ऐसा क्यों संकट आया? क्योंकि पूर्व में अनेक भव पहले तूने कुछ पाप किया था, वो तो उस समय स्थिति भी बंदी थी, उतने काल के लिए वो तो जीव के सत्ता में पड़ा रहा चुपचाप, अभी उसका फल देने का समय आया है, इसलिए अभी अच्छे भाव करते हुए भी फल किसका मिल रहा है? पुराने कर्मों का। ये सारे में ऐसे ही समझ लिया, अभी बहुत अच्छा धन मिल रहा है, क्या मानता है? मैं बहुत होशियारी से धंधा करता हूँ इसलिए मुझे धन मिल रहा है, इसलिए मुझे अच्छे संयोग मिल रहे हैं, वो फल किसका है? पुराने कर्मों का। और अभी सच्चाई से धंधा करेगा तो उसको वैसा आगे कर्म बांधेगा, या बुरे कोई चोरी करके स्मगलिंग करके या अन्य कोई भी अन्याय से धन कमाएगा तो कर्म तो बांधेगा और उसका बुरा फल भी भविष्य में भोगेगा। हमें लगता है ना कि अभी तो चोरी चपाटी करने वाले तो पैसे वाले और हम अच्छे हैं तो हमारे पास कोई धन नहीं है, ये सीधे मार्ग से सरल मार्ग से सच्चाई से धन नहीं मिलता आजकल, ऐसा कहते हैं ना। परंतु उसके साथ ये सारा जो जो कर्म बनेगा, एक एक परिणाम का फल है, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, वो सारा ऑटोमेटिक वहाँ कर्म बनते रहते हैं। हम भले बाहर किसी को दिखावे नहीं, किसी को पता नहीं चले अपने बुरे भावों का, ऐसे कपट कर लेते, परंतु उस एक एक भाव का वहाँ ऑटोमेटिकली वो कर्म वैसे वैसे बनते हैं, ऐसा ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्थिति बंद हुआ था, वह स्थिति होने पूरी होने के कारण अब वह फल तुझे मिल रहा है। नीचे से वो चौथी लाइन, वर्तमान काल में तू जो राग द्वेष मोह कर रहा है उनके कारण वर्तमान में तो दुखी है ही, परंतु अभी नया स्थिति बंद और अनुभव करने के कारण भविष्यकालीन दुख की भी तू स्वयं ही तजवीज कर रहा है, उसके बीज बो रहा है। यानी वर्तमान में राग द्वेष मोह करके हम क्या कर रहे, भविष्यकालीन के दुख के अभी बीज बो रहे, उसका फल मिलेगा हम जब वो स्थिति पूरी करके उदय में आएंगे तब। हमने अभी देखा कि योग के कारण कर्म जीव की ओर आकृष्ट होते हैं, आते हैं, आना यानी उसको कहते आश्रय, उनका आश्रय होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है तथा उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियों में विभाजन होता है, परंतु मात्र योग के कारण स्थिति नहीं बनती। यानी अकेला योग होगा तो स्थिति बंद नहीं होगा और अनुभाग भी नहीं बनता। गुणस्थान संबंधी तुम्हारा अभ्यास नहीं है, फिर भी एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कुल 14 गुणस्थान है, उनमें से पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के जीवों में कषायों का सद्भाव पाया जाता है और 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों में कषायों का पूर्ण अभाव रहता है। पहले गुणस्थान से लेकर 13वें संयोग केवली गुणस्थान तक के जीवों में योग का सद्भाव होता है और 14वें अयोग केवली गुणस्थान में योग का अभाव पाया जाता है। आप तो सब इसको जानते हैं, इसलिए मैं खाली पढ़ रही हूँ, जहाँ कोई नई बात आएगी वहाँ एक्सप्लेन करूंगी। इसका अर्थ हुआ कि पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग दोनों ही पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। इसलिए वहाँ चारों ही प्रकार का बंध होता है। कौन से चार प्रकार सिद्धार्थ? अनुभव, बहुत अच्छा। कर्मों के इस आश्रय को सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं, यानी चारों प्रकार का होता है ना, कषाय के कारण जो होता है उसको कहते हैं सांप्रदायिक, क्योंकि सांप्राय नाम कषाय का है। दसवें गुणस्थान का नाम क्या है? हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म कषाय, यानी वहाँ सूक्ष्म लोभ है ना, ये सारे नाम उसके अर्थ के कारण ही पड़ते हैं। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानों में योग है परंतु कषाय नहीं है, इस कारण वहाँ प्रदेश बंध और प्रकृति बंध तो होता है परंतु स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता, इसलिए कर्म आकर उसी समय में खिर जाते हैं। जिस तरह भींत पर फेंकी हुई सूखी रेत भींत पर चिपकती नहीं है तत्काल गिर जाती है, उसी तरह ये कर्म परमाणु जीव के प्रदेशों से चिपकते नहीं है, उसी समय खिर जाते हैं और अनुभाग नहीं होने के कारण उनका फल भी नहीं मिलता। आश्रव के इस प्रकार को ईर्या पथाश्रव कहते हैं। 14वें गुणस्थान में कषाय तो है ही नहीं, योग का भी अभाव पाया जाता है। अयोग गुणस्थान है ना वो, अयोग केवल, तो वहाँ योग है नहीं है। आत्म प्रदेशों का कंपन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, अकंप अवस्था प्राप्त होती है, इस कारण कर्म का आगमन ही नहीं होता। जहाँ आश्रय ही नहीं है वहाँ बंध का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, इसलिए वहाँ आश्रय भी नहीं है वहाँ और बंध भी नहीं है, तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी? 14वें गुणस्थान में, हाँ, 14वें गुणस्थान में आश्रय नहीं है बंध भी नहीं है तो संवर निर्जरा होगी कि नहीं होगी? हाँ, पुराने कर्म है ना, चार आघाती कर्म है, संवर है कि नहीं वहाँ? अरे पूर्ण संवर है, कल हमने देखा था कहाँ कितनी प्रकृतियाँ बंधना रूप गया, 120 प्रकृति का बंध हो सकता है, हमने देखा था वो सारी की सारी बंधना रूप गया, तो पूर्ण रूप से संवर तो 14वें में ही है। तब तक तो पार्शल संवर होता था, अब निर्जरा है कि नहीं? निर्जरा तो है ना, तभी तो सारे कर्म खिर जाएंगे, तभी तो वो मोक्ष हो जाएगा, बिना निर्जरा के कैसे होगा? तो संवर और निर्जरा है, आश्रय और बंध वहाँ पूर्ण रूप गया, और तब तक के जीवों को आश्रय भी है बंध भी है संवर भी है निर्जरा भी है। चौथे से लेकर हमने देखा था मिथ्यात्व में तो आश्रय बंध है संवर निर्जरा नहीं है, चौथे गुणस्थान में संवर निर्जरा प्रारंभ हो गई। संवर कितने का? जितने प्रकृति बंद रुक गया था, हमने देखा था 41 प्रकृति का बंद रुक गया उतना संवर है, और जितने प्रमाण में वहाँ जो कुछ निर्जरा होती है उतनी निर्जरा है, ये सारा चलता रहेगा। 10वें गुणस्थान तक तो ये सारा ये मुख्य आश्रय जो है मोहनीय का भी आश्रय रुक जाएगा, बाद में 10वें में अभी ज्ञानावरण वगैरह का आश्रय है, 12वें में तो वो भी बंद रुक गया, ऐसे करते 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 13वें के अंत तक तो साता वेदनीय वाला है आश्रय, उसके बाद 14वें कोई आश्रय बंद नहीं है परंतु पूर्ण रूप से संवर है और निर्जरा भी हो रही है। एक ऐसा विचार करना, सोचना उसके ऊपर, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है या याद किया नहीं है, ऐसी बातें शास्त्र में भी नहीं आएगी, तो कॉमन सेंस से हम उस पर जितना सोचेंगे उतना हमें क्लियर होता जाता है। गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था में तो जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है, उसकी सत्ता में एक भी कर्म नहीं रहता, हमने देखा था ना द्रव्य कर्म से रहित है, जीव पुनश्च न कषाय करता है न योग होता है, यानी वहाँ तो कषाय भी नहीं करता है जीव, और उनके तो चंचलपना भी नहीं होगा आत्म प्रदेशों का, इसलिए नया कर्म फिर कभी नहीं आता, कभी यानी अनंत काल तक कभी नहीं आएगा, यानी जीव पुनः संसार अवस्था में नहीं आएगा। इस कारण जीव अनंत काल तक निष्कर्म अवस्था में अपनी अनंत शक्तियों की व्यक्त पर्यायों का आस्वाद लेता है, यानी अपने अनंत अव्यवाद सुख का भोग करता है। वहाँ क्या मजा ऐसा लगता है ना, तो अपने अनंत गुणों का वहाँ आनंद लेता रहता है। कर्म का जीव के साथ यह जो बंध होता है उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। कल बात आई थी ना, हाँ, संश्लेष संबंध की। इस बंध की विशेषता है कि कुछ काल तक यह संबंध बना रहता है, छूट नहीं सकता। अन्य द्रव्यों तथा अन्य पुद्गलों से जीव का ऐसा संबंध नहीं पाया जाता। अभी मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो इसको तो संश्लेष संबंध नहीं कहेंगे, हमने मुट्ठी में पकड़ के रखा तो भी। उनके साथ तो जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो सकता है, संश्लेष संबंध नहीं। कर्म के साथ भी जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, परंतु उसमें यह विशेषता है कि जीव एक स्थान से अन्य स्थान में गमन करता है तब कर्म भी उसके साथ बद्ध अवस्था में जाता है। हम गहने पहनकर बाहर घूमने जाते हैं और गहने भी हमारे साथ जाते हैं, परंतु हम उन्हें उतार कर भी जा सकते हैं या उन्हें उतार कर अन्य गहने धारण कर सकते हैं। कर्म के बारे में ऐसा हो नहीं सकता। बंधे हुए कर्म उनकी स्थिति पूर्ण होने तक जीव का साथ नहीं छोड़ते, जीव भी उन्हें छोड़कर अन्यत्र गमन नहीं कर सकता। तुम कहोगे कि शरीर भी जीव के साथ हमेशा रहता है। हाँ, परंतु एक भव समाप्त होने पर दूसरे भव में जाते समय यानी मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़कर जीव अन्यत्र गमन करता है। शरीर और जीव भिन्न भिन्न हो जाते हैं, परंतु मृत्यु होने पर भी जीव कर्म को छोड़कर अन्य भव में गमन नहीं कर सकता। जीव का तेजस और कारमान शरीर कहो या कर्म कहो, एक ही बात है। ये पूरे आठ कर्मों का जो समूह है उसी को कारमान शरीर कहते हैं। तो जीव के साथ कौन सा शरीर जाएगा? तेजस और कारमान। तो जीव का तेजस और कारमान शरीर उसके साथ परभव में गमन करता है। बंद होने पर कर्म जीव के साथ रहते हैं, पुराने कुछ कर्म उदय होकर खिरते रहते हैं और नए कुछ कर्म आकर बनते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी कर्म अपने आप खिरकर जीव बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित हो गया हो। तो कहेंगे ना, आपकी मुक्ति कब हो, देखिए भगवान ने, हाँ ये अमुक साल में हमारी मुक्ति होगी, चलो हमें बैठे रहेंगे। तो बिना पुरुषार्थ के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मा के अनुभव के, बिना शास्त्र स्वाध्याय के अपने आप हो जाएगा सारा, क्योंकि हमने वो निमित्त उपादान में ये कर्मबद्ध परिणाम देखे थे ना, पांच समवाय देखे थे, पांच ही कारण मिलते स्वभाव। अभी पुद्गल को तो या अधर्म द्रव्य को तो मोक्ष नहीं होगा, तो मुक्त कौन होगा? जहाँ बंद है वहाँ तो जो बंदा है वही तो मुक्त होगा। तो हम यहाँ जीव की बात, अपनी बात करते हैं। तो अपना मोक्ष होगा, यानी मोक्ष हो सकता है पर्याय में, ऐसा स्वभाव यहाँ पड़ा है, ये स्वभाव हुआ। वहाँ निमित्त रूप से कर्म का अभाव भी होगा। फिर पुरुषार्थ, यानी बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। जो जीव स्वयं को पहचान कर उसी में स्थिर होगा, उसी में लीनता करता रहेगा, तब उसको मोक्ष होगा। फिर काल लब्धि, यानी उसका समय निश्चित है, वो समय से पहले होगा ऐसा कभी नहीं होगा। और भवितव्य, यानी जो होने वाला है वही होगा, अन्य कोई पर्याय नहीं होगा। ये हमारे पलटाने से वहाँ कुछ पलटता नहीं। ये पांचों ही कारण मिलते प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक समय की पर्याय में ये सारे ही लागू होते। ये तो हो जाते अपने आप, हमें इनको जुटाना नहीं पड़ता। तो ऐसा कोई मानता है कि बिना पुरुषार्थ का ही अपने आप कर्म खिर जाए, बिना पुरुषार्थ के ही अपने आप किसी को मिथ्यात्व का उपशम हो जाए और सम्य दर्शन हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसमें जीव का पुरुषार्थ क्या होगा? तो सबसे पहले शास्त्र के द्वारा तत्व निर्णय करेगा, ये जीव क्या है, अजीव क्या है, इसकी पहचान करेगा। मैं जीव हूँ ऐसे अपने लक्षण द्वारा जानेगा। कौन सा लक्षण है हमारे पास? हाँ, ज्ञान दर्शन है ना। तो अपने को ज्ञान होता है ये तो ख्याल में आ रहा है, या मैं हूँ ऐसा भी एहसास है। तो इस ज्ञान लक्षण द्वारा अपने को पहचान कर, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूँ और यह मैं हूँ, ऐसे दोनों तरफ से पहचानना होगा। कि जब हम कहते हैं कि ये पुस्तक है, तो क्या जानते इसी समय कि ये अन्य चीज नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, ये पेन नहीं है, ये स्टैंड नहीं है, ये अन्य कुछ नहीं, ये सारा उसी समय ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? जब हम कहते हैं ये पुस्तक है, तो गौण रूप से ये अन्य कुछ नहीं है, ऐसा हमारे ख्याल में है कि नहीं है? जब हम कहते हैं ये काला है, तब ये गोरा नहीं है, ये लाल नहीं है, ये पीला नहीं है, ये सारा हमारे ख्याल में है, ये ज्ञान में है। वैसे जब यह मैं हूँ ऐसा अपना स्वीकार किया, तो बाकी चीजें मैं नहीं हूँ ऐसे दोनों तरफ पक्का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसे करके अपने में स्थिर हो जाएगा, तो वहाँ जीव को आत्मा की अनुभूति हो जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। यही तो पुरुषार्थ है, अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है क्या उठक बैठक लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। अपना स्वरूप जानना, और भी जानने के पूर्व पूर्व पर्याय में ये सारी बातें आएगी। पहले शास्त्र का सुनना भी होगा, फिर उस पर हम खुद विचार भी करेंगे, फिर अंतर्मुख होकर अपने आप को ज्ञान के द्वारा जानेंगे। ये सारा पुरुषार्थ में आएगा, ये सारी एक 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 पर्याय वो होती जाएगी, और इसी क्रम से आगे मोक्ष भी होगा, यानी अंतरंग स्थिरता बढ़ेगी। तो पांचवें गुण स्थान में वैसे अनुव्रत के परिणाम होंगे, स्थिरता और बढ़ेगी। तो मुनि योग्य दीक्षा लेने के परिणाम आएंगे, स्थिरता और बढ़ेगी। तो श्रेणी योग्य वहाँ परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाएगी, स्थिरता और बढ़ेगी। तो बारहवें गुण स्थान के बाद केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, पूर्ण वितरागता बारहवें में प्रकट होगी, और फिर तेरहवें में केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ये सारा ही पुरुषार्थ द्वारा होता है। जब हम एक की मुख्यता करेंगे तो उसका ही कथन होगा, परंतु बाकी का भी गौणपने स्वीकार है। कभी कभी निमित्त की मुख्यता से करेंगे कि ऐसा भगवान आप मिले इसलिए मुझे ये मार्ग प्राप्त हुआ, या जिन ज्ञानी गुरु से हमको देशना मिली तो हम क्या कहेंगे, कांजी स्वामी आपसे हमें ये मार्ग प्राप्त हुआ। निमित्त की मुख्यता से मुख्यता है, परंतु बाकी चारों कारण हम स्वीकार करते हैं। शिष्य जब गुरु को कहता है कि आपके कारण मुझे ये ऐसा सम्यक दर्शन हुआ, तो वहाँ भी वो जानता है कि मेरा स्वभाव था इसलिए हुआ, मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए हुआ, मेरी काल लब्धि आई इसलिए हुआ, ये ऐसा ही होना था उसी समय इसलिए हुआ। परंतु अभी वो एक की मुख्यता से बात कर रहा है, परंतु अन्य को वो टालता नहीं है, उसका भी स्वीकार है। कभी कभी शास्त्र में आती है कि काल लब्धि आने पर जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा कथन शास्त्र में आता है। तब एक को मुख्य किया, बाकी को गौण किया, बाकी का अभाव नहीं किया। वहाँ सर्वथा काल लब्धि से होता ऐसा नहीं कहते, कहीं कहीं नियति से, नियति कहो या काल लब्धि कहो, कभी कभी कहते जैसी हो ना रहे वैसी होगी। मुख्यता तो कर सकते हैं, परंतु कोई लोग जो सर्वथा एक ही कारण से कार्य मानते हैं, उनको एकांतवादी कहते हैं। जैसे नियतिवादी, वो क्या कहते हैं, वो सारा नियति के भरोसे है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यानी वो अन्य चार कारणों को नहीं मानते, सर्वथा नियति और नियति पर अपना कार्य होना बोलते हैं, तो उनको कहते हैं नियतिवादी, यानी एकांतवादी। एक एक को ही कारण को पूर्ण रूप से उन्होंने ग्रहण, कोई क्या कहता है निमित्त से ही सारा होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो निमित्तवादी है, ऐसे एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना। तो उसका सही अर्थ अपने ख्याल में आना चाहिए। ये भी सारी बातें निकली ना, पांच समय की निमित्त के वगैरह, अभी पुस्तक लिख रही हूँ नया मैं, तो उसमें ये सारे कारणों की चर्चा है, सारे कारण, निमित्त निमित्त निमित्तिक संबंध, उपादान, षटकारक, ये पांच समूह है, ये सारे सारे कारण 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 कार्य सारा। तो ये पांच समय तो हमने यहाँ भी लिए थे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। देखो तो कर्म अपने आप खिर कर, बिना पुरुषार्थ के कर्म विरहित नहीं हो जाएगी कोई। जीव के साथ कर्म का जो अस्तित्व है उसे कर्म की सत्ता कहते हैं, उस कर्म को सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कहते हैं। कर्म बंद होने पर कुछ कर्म करोड़ों अब्जों सागरों वर्ष तक, कितने सागरों वर्ष तक, यानी अभी कोई कर्म बांधा तो कितने भवन तक वो पड़ा रहेगा अंदर, ख्याल नहीं है? जिसकी जितनी स्थिति पड़ेगी उतने काल तक वो जीव के साथ सत्ता में पड़ा रहेगा, और अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर फल देकर निकल जाते हैं, फिर जाते हैं, उसे उदय कहते हैं। ध्यान में रहे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग भले हैं जो पाप नहीं करते हैं, फिर भी उन पर आपत्तियां आती है, और कुछ लोग पाप में डूबे रहते हैं फिर भी वैभव में और चयन में रहते हैं। उसका कारण यही है कि वर्तमान में जो संयोग प्राप्त होता है, धन वैभव मिलता है, वह पूर्व कर्म का फल है, और वर्तमान में पाप करके जो कर्म बंधेगा उसका फल भविष्य में प्राप्त होगा। कर्म की सत्ता कायम रहती है, यह बात समझने के लिए एक दृष्टांत देखते हैं। कल्पना करो कि पानी से भरी हुई बड़ी टंकी है, उसमें ऊपर से 5 नलों में से पानी आ रहा है, और उसी समय नीचे की ओर लगे हुए उसी आकार के 5 नलों में से पानी टंकी में से बाहर जा रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि वह टंकी कितने दिनों में खाली हो जाएगी? खाली नहीं होगी ना, टंकी हमेशा पानी से भरी रहेगी। उसी तरह निरंतर बंध और उदय होता रहता है और कर्म की सत्ता बनी रहती है। इस रहस्यमय कर्म कहानी का अगला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देखेंगे। अब यहाँ डेफिनेशन बताइए, तो कर्म किसे कहते हैं? तो जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। ये हमने गुणस्थान प्रवेशिका में कर्म की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, पढ़ो आप पुस्तक में देख कर पढ़ो अंजलि। कारमान वर्गणा की अवस्था को सिद्धांत आप पढ़िए। हाँ, जीव उसको कर्म बनाता है ना, कारमान वर्गणा को। जीव कारमान वर्गणा को कर्म बनाता है कि नहीं बनाता? कि कारमान वर्गणा स्वयं परिणमित होती है। देखो फिर पढ़ो, वरुण पढ़ो पहले इस बराबर। व्यवस्था को कर्म कहते हैं। वेरी गुड, ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अच्छा पढ़ते थे। तो किसने परिणमित किया? जीव ने किया ने? क्या लिखा है दीपाली? स्वयं परिणमित। हाँ, यानी कर्म स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है, और तब उसमें निमित्त है जीव के मोह राग द्वेष परिणाम। जीव स्वयं मोह राग द्वेष करता है तब पुराने कर्मों का उदय निमित्त है। जी, अभी अगला सेकंड पॉइंट। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कारमान वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ जो विशिष्ट संश्लेष संबंध होता है उसे बंध कहते हैं। बंध ने क्या हुआ? जीव ने क्या किया? मोह राग द्वेष परिणाम। जीव ने मोह राग द्वेष परिणाम किए, वो हुआ निमित्त। कार्य क्या हुआ? कारमान वर्गणा स्वयं कर्मरूप हो गई। तो वहाँ की कारमान वर्गणा कर्मरूप होकर वहीं पड़ी रही, ऐसा नहीं है। तो कारमान वर्गणा जीव के प्रदेशों में आकर स्थित हो गई। जीव के कर्म जीव के प्रदेशों के बाहर कहीं अन्य नहीं रहते। या हमारा सारे कपड़े कपाट में रख देते, वैसा वहाँ कोई अन्यत्र कहीं रहते नहीं जीव के कर्म। तो जहाँ जीव के प्रदेश है उन्हीं सारे प्रदेशों में वो बंधे हुए, जिसको हम कहते हैं ना कर्म, कारमान वर्गणा से कर्म हुए, वे कर्म कहाँ है? जीव के साथ एक क्षेत्रावागाह रूप से यहाँ रह रहे, और जब उनकी स्थिति पूरी हो जाएगी तब वो जीव को छोड़कर निकल जाएंगे या वहीं पर रहेंगे, परंतु वो कर्म नहीं कहेंगे, अकर्म हो जाएंगे। ख्याल आता है अंजू? अब तीसरा पॉइंट, बंध के चार भेद है, अभी इसके नाम कौन कहेगा मुझे? हाँ मंदा बहन, आप कहिए राजेश। हाँ दीपाली, वेरी गुड। अब प्रकृति एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, ये सारा हमने पढ़ा है, यहाँ रिविजन चल रही है हमारी। कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। कर्मरूप होने योग्य कर्मान वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमन होना प्रकृति बंध है। मैंने प्रकृति यानी क्या? स्वभाव। कर्म का जैसा स्वभाव है वैसा उसको नाम पड़ता है, यानी प्रकृति बंध किसे कहेंगे? कि जो ज्ञानावरणादि आठ रूप डिवाइड होना, विभाजन होना, उसको कहेंगे प्रकृति बंध। अब पांचवा पॉइंट, प्रत्येक समय में जितने पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणमित होकर जीव के साथ बनते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। यानी एक समय में कितने कर्म परमाणु आकर जीव के साथ जुड़े, उसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंध। कर्मरूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु जितने काल तक आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधन में रहते हैं, उसको स्थिति बंध कहते हैं। यानी जब आकर जुड़े कर्म परमाणु, तब उसमें स्थिति निश्चित हुई। क्या निश्चित हुआ? कि वो जीव के साथ इतने काल तक उसी क्षेत्र में पड़े रहेंगे। जीव यहाँ से अन्य भव में चला जाएगा तो भी वो जीव के प्रदेशों में ही है, वो कभी जीव के प्रदेशों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? स्थिति बंध। अब बंधने वाले कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। ये बंधते समय निश्चित हुआ, फल तो देगा जब ही देगा, जब उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी। परंतु जब बंधा तभी उसमें क्या फल देगा, कितना फल देगा, वो निश्चित हो गया। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म जीव प्रदेशों के साथ रहते हैं, उसे सत्ता या सत्व कहते हैं। देखो हर समय बन रहे ना, हर समय नए नए बन रहे, आ रहे आ रहे आ रहे, पुराने में से कुछ निकल जा रहे, परंतु अंदर हमेशा कुछ न कुछ कर्म परमाणु बने रहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? सत्ता। कि जीव के साथ सत्ता में, यानी उनकी उपस्थिति है ना जीव के साथ, तो उसको कहते हैं कर्म की सत्ता। ये कर्म के बारे में ये शब्द हम रोज रोज इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सत्ता क्या, स्थिति क्या, प्रदेश क्या, प्रकृति क्या, ये अभी एक बार अर्थ ख्याल में आएगा तो इसके ऊपर हम सारी कर्म की थियरी समझाएंगे तो ये फटाफट ख्याल में आ जाएगी। जो शब्द हमें मालूम है उसी का यूज करके हम अगली अगली बातें समझाएंगे, तो इसलिए ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ये सारा आसान है। ये तो क्या शब्द नए है ना, तो पहली बार सुनते तो ऐसा अटपटा लगता है, बार बार सुनने से उसका सहज अर्थ ख्याल में आ जाता है। तो उसको सत्ता कहो या सत्व कहो, एक ही बात है। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म कब फल लेता है? स्थिति पूरी होने पर, स्थिति पूरी हुए बिना नहीं फल देता। अभी पार्श्वनाथ मुनि ने तीर्थंकर प्रकृति पहले बांधी थी, पहले भव में बांधी, फिर मुनि हुए, फिर जाके स्वर्ग में गए, वहां भी तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहे, फिर यहाँ आए, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कंटिन्यूअस आठवें गुणस्थान तक बांधते रहे। और जब भी ये ऐसी सारी प्रकृति अंदर सत्ता में पड़ी थी और जब ध्यान अवस्था में बैठे थे तो उपसर्ग हुआ, तो तीर्थंकर प्रकृति का फल तो महान पुण्य का उदय है, जब फल मिलेगा तभी। अभी अंदर पड़ी थी ना, तो अभी कुछ काम की आएगी क्या उनके? उपसर्ग हो रहा था तब तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था, वो उदय होता है तेरहवें गुणस्थान में। तो अभी तीर्थंकर प्रकृति का उनको क्या फल मिल रहा था? कुछ भी नहीं। वैसे जो अन्य अन्य प्रकृतियां अंदर पड़ी है अपने, शुभ या अशुभ, जिसकी सत्ता स्थिति पूरी नहीं हुई है, अभी फल देने का टाइम नहीं आया, तब तक उसका कुछ फल नहीं मिलेगा जी। तो कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को, यानी कर्म जो फल देता है उसको उदय कहते हैं। तो इसमें और जो जो शब्द नए नए आएंगे वो हम क्रम से सीखेंगे। तो आज यही विराम लेती हूँ, तुम्हारी माँ। इसे ये पहला प्रकरण आज हमारा पूरा हुआ। कल घाती अघाती कर्म के बारे में हम देखेंगे। इन कंटिन्यूशन हर समय बांधते रहे। कीर्तन और प्रकृति हर समय बनती है। ऐसे अलग अलग प्रकृतियों का वो अलग अलग नियम है। निरंतर बंधने वाली भी होती है और कुछ कभी कभी बंधने वाली होती है। उसमें भी जैसे आयु कभी कभी बनती है या अन्य भी कोई प्रकृति है वो कभी कभी बनती है। आहार अंगोपांग वो सातवें आठवें में बंधेगी। तो ऐसे वो उसके अलग अलग नियम है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो आनी मन